ورحمة الله وبركاته. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنی حفاظت میں، اپنی عافیت میں، اپنی خیر و برکت میں، اپنی رحمتوں میں رکھے. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ الترغیب والترہیب کی حدیث نمبر 29 ہے. سیدنا ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جس علم اور ہدایت کے ساتھ مجھے مبعوث فرمایا ہے اس کی مثال اس بارش کی سی ہے جو زمین پر برستی ہے تو زمین کے کچھ حصے زرخیز اور عمدہ ہوتے ہیں، وہ پانی کو قبول کر لیتے ہیں اور کثرت سے گھاس اور چارہ اگاتے ہیں، اور زمین کے کچھ حصے خشک اور نشیبی ہوتے ہیں، وہ پانی کو روک لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، وہ وہاں سے پانی پیتے ہیں، جانوروں کو پلاتے ہیں اور آبپاشی کرتے ہیں، اور زمین کے ایک اور حصے پر بارش نازل ہوتی ہے جو چٹیل ہے، نہ تو وہ پانی کو روکتا ہے اور نہ گھاس اگاتا ہے. یہی مثال ہے اس کی جو دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرے جس کے ساتھ میں مبعوث کیا گیا ہوں، وہ اسے فائدہ پہنچائے اور وہ علم سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے، اور اس شخص کی مثال ہے جو اس کی طرف توجہ نہ کرے اور نہ اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کو قبول کرے جس کے ساتھ میں مبعوث کیا گیا ہوں. پہلی بات جو حدیث کے حوالے سے توجہ طلب ہے وہ یہ کہ جس علم اور ہدایت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث کیا ہے، کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں دنیا میں کتنے انسان بستے ہیں؟ اور ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ذہن بھی عطا کیا ہے، اس کی زندگی کا وقت، اس کا مال، اس کی کوششیں، سب کچھ کتنا قدر و قیمت والا ہے. لیکن ہر ایک چیز جو انسان سے صادر ہو رہی ہے، ہر ایک کام، وہ وقت جو انسان کو ملا ہے، جو عمر انسان گزار رہا ہے، جو مال انسان کما رہا ہے، جو خرچ کر رہا ہے، انسان دنیا میں جو کچھ بھی جس نوعیت کا بھی کام انجام دے رہا ہے، سب کچھ یا تو مفید ہو سکتا ہے یا غیر مفید، یا نفع مند ہو سکتا ہے یا نقصان دہ، خسارہ ہے، ٹوٹل لاس ہو سکتا ہے. ہاں، انسان حقیقتاً اس دنیا میں رہتے ہوئے ایٹ رسک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بلٹ ان نیکی بدی کی پہچان دی ہے، اسے عقل دی ہے، انبیاء اور کتابیں عطا کی ہیں جو انسان کے لیے ہیلپ فل ہیں. اگر ہم سادہ سے لفظوں میں دیکھنا چاہیں तो दो इंटरनल सपोर्टर्स हैं इंसान को दुनिया की जिंदगी में मदद देने के लिए। इंटरनली अंदरूनी तौर पर दो चीज़ें हमारे लिए मुआविन साबित होती हैं, एक तो अक्ल, क्योंकि अक्ल से हम डिसीजन कर सकते हैं, फैसला कर सकते हैं, और दूसरे अच्छाई और बुराई की पहचान। लेकिन अच्छाई और बुराई की पहचान इंसान को हो नहीं पाती जब तक के इंसान के पास नॉलेज ना हो। अच्छाई और बुराई का सेंस कर सकता है इंसान, लेकिन इसके लिए इल्म की ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने दो बैरूनी मददगार इसीलिए फराहम किए हैं और उसका इंतज़ाम किया है, यानी अंबिया और अंबिया के बाद जो उनके रास्ते पर चले, और दूसरे किताबें। अगर आप देखें तो ये जैसे इंसान की हस्ती है, तो इंसान को बाहर से नेकी की भी कॉल मिलती है, बदी की भी मिलती है। इंसान के पास अच्छा नॉलेज भी है, जैसे वही का इल्म है, और इंसान के पास नॉलेज के ऐसे ज़राए हैं जिसकी वजह से इंसान बुराई की तरफ लुढ़कता ही चला जाए, यानी उसे लम्हा ना लगे और वो अपनी ज़मीन से फिसल के ऐसी बुराई में मुलव्वस हो सकता है जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। तो ये अल्लाह ताला की रहमत है कि अगर इब्लीस कॉल देता है तो अल्लाह ताला की तरफ से कॉल देने के लिए पैगंबर आए, पैगंबरों के बाद वो लोग जो नेकी की तरफ बुलाते हैं। अब आप अपनी ज़िंदगी की अगर मिसाल देखें तो आपके पास भी अच्छाई बुराई की पहचान मौजूद है, अक्ल मौजूद है, और दूसरी तरफ अंबिया की आमद और अल्लाह ताला की जानिब से आने वाली किताबें जैसे किताब और सुन्नत, कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन लोगों के बिहेवियर्स डिफरेंट हैं, लोगों का तर्ज अमल मुख्तलिफ है। इस हदीस में यह मिसाल दी गई है और ये समझने वाली और बहुत ही खूबसूरत हदीस है, हमारी ज़िंदगी से मुताल्लिक है। लेकिन एक चीज़ का डिसीजन आप करके चलिए तो हदीस नफ़ा देगी, वरना यह है कि हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं लेकिन उन चीज़ों से फ़ायदा नहीं उठा पाते। आप इरादा कर लें और दुआ कि अल्लाह ताला हमें इसका सच्चा फहम नसीब कर दे, क्योंकि ये सबकी ज़िंदगी और सबकी ज़िंदगी में इल्म की ज़रूरत है। अब देखिए, जैसे आप छोटी से छोटी कोई मशीनरी ऑपरेट करना चाहते हैं ना, अगर आपके पास उसका इल्म नहीं है, नॉलेज नहीं है कि उसे कैसे ऑपरेट करना है और वो ख़राब हो जाती है, नो वारंटी। वारंटी तब है जब आपने उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया। तो हमारी ज़िंदगी, हमने कैसे ऑपरेट करना है अपनी ज़िंदगी को, इसके लिए अल्लाह ताला ने अंबिया भेजे, किताबें भेजी, ताकि हमें पता चले हमने ज़िंदगी कैसे गुजारनी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस इल्म और हिदायत के साथ अल्लाह ताला ने मुझे मबूस किया है, तो वो इल्म कौन सा है? फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, नेचुरल साइंसेस, सोशल साइंसेस, या आपकी मेडिकल साइंस है, या लैंग्वेजेस है, कौन सा इल्म है? ज़िंदगी का इल्म है। जैसे कुरान मजीद में आता है और बहुत ही प्यारी लगती है मुझे, सूरह अंबिया की आयत नंबर 10 है, लकद अनज़लना इलैकुम किताबन, बिला शुबा यकीनन हमने तुम्हारी तरफ किताब उतारी है, फीही ज़िक्रुकुम, इसमें तुम्हारा तज़किरा है। यानी ये वो इल्म है कुरान मजीद का इल्म, जिसमें हमारी ज़िंदगी का तज़किरा है, हमें ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, कैसे नाकामी से बचना है, कैसे कामयाब होना है। तो जिस इल्म और हिदायत के साथ अल्लाह ताला ने मुझे मबूस किया है, दूसरी चीज़ की भी वजाहत करना चाहती हूँ। क्या आप जानते हैं हिदायत किसे कहते हैं? हिदायत दो चीज़ों का नाम है। हिदायत को समझने के लिए लोगों को बहुत डिफ़िकल्टी पेश आई है, मुश्किल पेश आई है। हिदायत का मतलब है नफ़ामंद इल्म, ये मेरी ज़ाती डेफिनेशन नहीं है, ये हमारे उलमा ने इसके ऊपर रिसर्च करके और सैकड़ों बरसों से ये डेफिनेशन सफर करके हमारे पास आई है, नफामंद इल्म और अमले सोले की तौफीक, दोनों चीजों का नाम हिदायत है। अगर किसी के पास नफामंद इल्म नहीं है तो उसको ये यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह के रसूल की बात सच्ची है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म अमल का इमाम है। अब जिस आप नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, जिस नमाज की अदायगी के लिए इमाम मौजूद नहीं है, जमात कैसे होगी? इमाम ही नहीं है, सारे लोग मौजूद हैं, पर्सनली कोई नमाज अदा कर सकता है? मर्दों के लिए पर्सनली नमाज अदा करना, और वो भी मस्जिद में खड़े होके, मस्जिद में कोई इसलिए तो नहीं जाता कि वहां पे अपनी नमाज पढ़ के चला आए। तो इमाम ही होगा तो पीछे मुक्तदी नमाज अदा करेंगे ना। अगर इमाम ना हो तो जमात नहीं हो सकती, तो इल्म ना हो तो अमल भी नहीं हो सकता। हो सकता है किसी का अमल दुरुस्त हो सकता है ना दुरुस्त हो। इल्म अमल का इमाम है। अब इल्म नाफे, नफामंद इल्म और अमले सोले की तौफीक, क्या आप जानते हैं, आप इरादा कर लें तो जरूरी नहीं कि आप सोले अमल अंजाम देने की पोजीशन में आ जाएं। तौफीक मिलेगी तो करेंगे। तौफीक बहुत बड़ी चीज है। यही तौफीक हिदायत का दूसरा हिस्सा है। याद रखिएगा, हिदायत उसी को मिलती है जिसके लिए रब चाहता है, और जिसके लिए रब चाहता है उसके लिए दीन की समझ का रास्ता आसान कर देता है। तो इल्म और हिदायत जिसके साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस किया गया, उसकी मिसाल, अब ये एग्जाम्पल से समझाया आसानी हो जाती है, उस बारिश की सी है। आपने बारिश बरसते देखी है कभी? कौन है जिसने ना देखी हो? बारिश बरसते देखना हमारा मामूल है। हम में से कोई ऐसा नहीं जो बारिश की किसी मिसाल को ना समझ सकता। उसकी मिसाल उस बारिश की है, बारिश की सी है जो जमीन पर बरसती है, तो जमीन के कुछ हिस्से जरखेज और उम्दा होते हैं, वो पानी को कबूल कर लेते हैं। क्या बताएं कि पानी को कबूल करने से क्या मुराद है? पानी को कबूल करने से क्या मुराद है जी? हाँ जी बताइए। एब्जॉर्ब कर लेना, यानी पानी जो है जमीन के अंदर जज्ब हो जाता है। और आप जानते हैं कि जब पानी जज्ब होता है तो बीज उगाने की पोजीशन में आती है जमीन। अगर पानी जज्ब ना हो तो जमीन उगा नहीं सकती। अब ये उम्दा जमीन है। मैं एक दफा दोबारा तवज्जो दिलाना चाहती हूँ, जैसे मट्टी वाली जमीन है ना, ऐसे ही दिलों की सरजमीन है। अच्छा, जैसे जमीन पर बारिश बरसती है ना, ऐसे ही दिलों की सरजमीन पर इल्म उतरता है। अब कोई दिल तो होता है जो उस इल्म को एब्जॉर्ब कर लेता है। अच्छा, पानी की एब्जॉर्प्शन का तो आपको पता चलता है, पानी कैसे एब्जॉर्ब होता है? मट्टी जगा देती है। तो इल्म कैसे एब्जॉर्ब होता है इंसान के अंदर? इल्म, क्या इल्म खुद ब खुद एब्जॉर्ब हो जाता है? जी बताइए। नरमे की वजह से होता है, ठीक है। अच्छा ठीक है जी, पीछे कुछ कोई बताना चाहता है कुछ? जी अच्छा ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से समझाना चाहती हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके साथ अल्लाह ताला भलाई का इरादा कर लेता है, जिसके साथ अल्लाह ताला भलाई का इरादा कर लेता है, उसे दीन की समझ अदा करता है, उसके अंदर दीन एब्जॉर्ब होता है, वरना नहीं होता। तो अल्लाह ताला किसके साथ भलाई का इरादा करता है? ये क्वेश्चन तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अल्लाह ताला का इरादा किसके साथ होता है? जो بھلائی کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، جس کا اپنا بھی ارادہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ارادہ کسی انسان کے ارادے کا باؤنڈ نہیں ہے، اس کا آزاد ارادہ ہے۔ تو جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ سمجھ کیسے ملتی ہے؟ پڑھنے سے، غور و فکر کرنے سے، یاد کرنے سے اور اس پر عمل کرنے سے۔ یعنی انسان علم پر اتنا غور و فکر کرے کہ علم کی بات اس کے دل کے اندر اتر آئے، اسے وہ بات سمجھ آ جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ہمیں کسی چیز کی انفارمیشن ملتی ہے، ہم اسے جان لیتے ہیں، جاننے کے بعد دوسری چیز آتی ہے کہ ہم اسے مان لیتے ہیں۔ یعنی جب ہم کسی چیز کو جانتے ہیں، اسے سمجھتے ہیں، پھر اسے مان لیتے ہیں، پھر ہمارا دل یقین کرتا، پھر عمل بدلتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جس چیز کو ہم سمجھتے نہیں ہیں وہ ہمارے دل کا حصہ بن جائے۔ تو یہ ابزارپشن جو ہے نا، اس میں ہماری سمجھ کا بڑا گہرا تعلق، سمجھنا بہت ضروری، اور یہ علم کے حصول کے طریقے ہیں۔ تو بارش سے مراد علم ہے اور زمین سے مراد دلوں کی زمین ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیے، جو زمین عمدہ ہوتی ہے، زرخیز ہوتی ہے، وہ پانی کو قبول کر لیتی ہے، اور جو دل عمدہ ہوتے ہیں اور جو دل زرخیز ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو قبول کر لیتے ہیں۔ اچھا، اب قبولیت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کثرت سے گھاس اور چارہ اگاتے ہیں۔ زمین تو گھاس اور چارہ اگاتی ہے نا، اور انسان جب کسی چیز کو ابزارب کر لیتا ہے، اسے سمجھ لیتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، تو انسان کے اعمال، اس کا جو خلق ہے، جیسے انسان کی صداقت ہے، سچائی جس انسان کے اندر در آتی ہے، جیسے انسان امین بنتا ہے، امانت، جیسے عفایت، جیسے عدل، عدل بہت بڑی صفت ہے، کسی چیز کو اس کے جائز مقام پر رکھنا، یہ عدل ہے، اور اس کے جائز مقام سے ہٹا دینا ظلم ہے۔ عدل انصاف کو کہتے ہیں نا۔ حقوق میں عدل کیا ہے؟ توازن اور تناسب، یعنی جس کا جو مقام ہے اس کو وہ مقام دینا، یہ عدل ہے، اور اگر ہم وہ مقام نہیں دیتے تو یہ ظلم ہے۔ تو زمین کے کچھ حصے زرخیز اور عمدہ ہوتے ہیں، پانی کو قبول کر لیتے ہیں، کثرت سے گھاس اور چارہ اگاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں اس مثال میں کتنی خوبصورتی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھایا ہے کہ کیسے انسان علم کو جب قبول کر لیتا ہے تو کیسے اس سے نیک اعمال سرزد ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا، زمین کے کچھ حصے خشک اور نشیبی ہوتے ہیں۔ خشک ہونے سے کیا مراد ہے؟ جیسے پتھریلی زمین ہے، خشک ہوتی ہے نا، اس کے اندر پانی ابزارب نہیں ہوتا زیادہ، لیکن وہ پانی کو روک لیتی ہے۔ جہاں پانی رک جاتا ہے، آپ ایسے علاقوں کو جانتے ہیں جہاں صرف بارشوں سے پانی پہنچتا ہے، تو لوگ بھی، جانور بھی، فصلیں بھی اس پانی سے سیراب ہوتے ہیں۔ اچھا، اب آپ دیکھیے کہ جہاں پہ پانی رک جاتا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، وہ وہاں سے پانی پیتے ہیں، جانوروں کو پلاتے ہیں، آبپاشی کرتے ہیں۔ اور زمین کے ایک اور حصے پہ، یہ تیسرا حصہ ہے، اس پر بارش نازل ہوتی جو چٹیل ہے، نہ تو وہ پانی کو روکتا ہے اور نہ گھاس اگاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں چٹانوں کے اوپر سے جب پانی گرتا ہے تو چٹان پانی نہیں روک سکتی، اس کا پانی یوں نشیبی جگہوں کی طرف چلا جاتا ہے، پانی بہ گیا، نہ تو زمین نے ابزارب کیا، نہ زمین نے روکا، پانی آیا اور پانی گزر گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ ہی وہ زمین گھاس اگاتی ہے، یہی مثال ہے۔ اب یہ مثال جب آپ نے بتائی تو آپ نے پہلی اگزامپل کے بارے میں بتایا ये उसकी है जो दीन की समझ बूझ हासिल करे, यानी जो जमीन अपने अंदर पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। इससे मुराद ये वही का इल्म पानी की तरह है ना, पानी की मिसाल दी। अब वो जब कोई समझता है, उसके दिल के अंदर उतर आया, उसे समझ बूझ मिल गई, तो ऐसे में क्या होता है कि दीन की समझ बूझ की वजह से खुद वो फायदा हासिल करता है, इल्म सीखता है, दूसरों को सिखाता है, अमल करता है। सबसे अच्छी जमीन कौन सी है जो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है? सबसे अच्छा इंसान भी वही है जो इल्म को एब्जॉर्ब कर लेता, समझ लेता है और फिर इल्म के मुताबिक अमल करता है। अब दूसरी जमीन वो है जिसने पानी अपने अंदर ठहरा लिया और दूसरों तक वो पानी पहुंचा रहा है। तो ये उस शख्स की मिसाल है जो इल्म सीखे और दूसरों को सिखाए। ये रोल ऑफ टीचर है कि उसने अपने लिए तो इल्म हासिल किया, लेकिन उसने इससे दूसरों को भी फायदा पहुंचा दिया, तो सिर्फ अपने तक रोक के नहीं रखा। और तीसरी मिसाल उस शख्स की है जो इस इल्म की तरफ तवज्जो ना करे, यानी इल्म आए और यूं गुजर जाए, और ना अल्लाह की उस हिदायत को कबूल करे जिसके साथ मैं मबूस किया गया। ये तीसरी मिसाल है। अच्छा, ये तीनों तरह के लोग हैं जो इल्म इल्म की मजालिस में जाते हैं, जो इल्म सीखने की कोशिश करते हैं। आपने कैसी जमीन बनना है जो पानी अब्जॉर्ब करती है या पानी रोक लेती है, या चटियल जमीन की तरह बनना है? अल्लाह ताला की किताब के इल्म के लिए, अल्लाह ताला के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के लिए कैसी सरजमीन बनना है आपने, ये आप इरादा करेंगे ना, ये आप बताएंगे कि आपका क्या जी चाहता है, कैसे इल्म हासिल करें। दो किताबें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती हैं, हमारी वेबसाइट पर भी मौजूद है और ये लेक्चर्स भी मौजूद हैं। इल्म दिल के अंदर क्यों नहीं उतरता, और दूसरा है इल्म दिल के अंदर कैसे उतरता है। तो ये कुरान मजीद के हवाले से, हदीस के हवाले से, क्यों, क्या चीज रुकावट बनती है, क्यों दिल अल्लाह की किताब के इल्म को कबूल नहीं करते, और फिर कैसे दिल कबूल कर जाते हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग है, छोटी छोटी चीजें हैं। अगर आप उसे पीडीएफ उसकी ले लें, पढ़ लें, या उसका लेक्चर सुन लें, तो आपको बहुत फायदा हो सकता है इसकी मजीद डिटेल जान के, क्योंकि ये हम सब की जिंदगी का मामला है। वी आर एट रिस्क, हम किनारे किनारे हैं, जहां पे हो सकता है कि अनजाने में हम नुकसान उठा जाएं। इसलिए बेहतर है कि हम इन चीजों के बारे में जानें, समझें और अपनी जिंदगी को चेंज करें। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता कर दे।